एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में साहित्य जगत में काफी हलचल मचाई है।
मिरांडा जुलाई का ऑल फोर्स।
बिल्कुल, 2024 में प्रकाशित। और मिरांडा जुलाई, वो सिर्फ एक लेखिका तो है नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार है, फिल्म मेकर, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, और उनकी कला की एक बहुत ही खास पहचान है।
वो अकेलापन और मानवीय जुड़ाव को बहुत ही अलग नजरिए से देखती हैं।
हाँ, और ऑल फोर्स शायद उनके इस हुनर का सबसे बेबाक, सबसे साहसी नमूना है। ये सीधे सीधे अधेड़ उम्र, स्त्री की यौन इच्छाओं और पहचान के संकट जैसे विषयों के दिल में उतरती है।
बिल्कुल, और इसमें जो ऑटोफिक्शन का तत्व है, मतलब कहानी की मुख्य पात्र भी एक कलाकार है।
ठीक मिरांडा जुलाई की तरह।
हाँ, उससे कहानी में एक अजीब सी सच्चाई और ईमानदारी का एहसास होता है। तो चलिए इस कहानी के सफर पे निकलते हैं। शुरुआत कैसे होती है इसकी?
देखिए, शुरुआत तो बड़ी आम सी लगती है। एक 45 साल की सफल कलाकार है जिसका नाम हमें कभी पता नहीं चलता, और वो एक लंबी रोड ट्रिप की तैयारी कर रही है लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क।
ऊपर से देखने पर तो उसकी जिंदगी एकदम मुकम्मल लगती है ना।
बिल्कुल, एक प्यार करने वाला पति है, हैरिस, एक छोटा बेटा है, करियर भी अच्छा है, मतलब सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन उस शांति के नीचे एक बेचैनी है, एक घुटन।
और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता।
हाँ, वो घर से निकलती है, गाड़ी चलाती है, और सिर्फ 20 मील दूर,
20 मील बस?
हाँ बस 20 मील दूर, मुनरोविया नाम के एक अनजान से शहर में अपनी गाड़ी रोक देती है।
कमाल है, ये तो भागना भी नहीं हुआ।
नहीं, वहां वो एक बहुत ही साधारण से मोटल में एक कमरा लेती है और एक फैसला करती है।
कि वो अपनी पूरी रोड ट्रिप का नाटक करेगी।
एग्जैक्टली, वो दुनिया को दिखाएगी कि वो सफर पर है, जबकि हकीकत में वो अपने घर के इतने करीब एक गुमनाम कमरे में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रयोग करने वाली है।
ये विद्रोह का एक बहुत ही शांत, बहुत ही निजी तरीका है। मतलब कोई चीख पुकार नहीं।
हाँ,
जुलाई शायद ये कह रही है कि सबसे बड़ा सफर तो अपने अंदर का होता है, उसके लिए भूगोल बदलने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल। और वो मोटेल का कमरा वो उसकी एक प्रयोगशाला बन जाता है।
तो वो ये दोहरी जिंदगी कैसे जीती है? मतलब एक तरफ पति।
हाँ, एक तरफ वो अपने पति हैरिस को रोज अपडेट भेजती है, इंटरनेट से तस्वीरें डाउनलोड करती है, गैस स्टेशन की, ढाबों की।
और कहानियां गढ़ती है।
हाँ, एक पूरी काल्पनिक यात्रा का ताना बाना बुनती है।
जानते हैं, ज्यादातर ऐसी कहानियों में पति को एक विलेन की तरह दिखाया जाता है,
सही बात है।
ताकि नायिका का कदम जायज लगे। लेकिन यहाँ हैरिस, वो तो एक अच्छा इंसान है।
और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। हैरिस को एक खलनायक नहीं है, वो सुरक्षा का प्रतीक है जिस पर नायिका सवाल उठा रही है।
तो वो किसी बुरे इंसान से नहीं, बल्कि एक अच्छे रिश्ते की सीमाओं से आजाद होना चाहती है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सवाल ये नहीं है कि मैं एक बुरी शादी से कैसे निकलूं, सवाल ये है कि क्या एक अच्छी शादी भी किसी इंसान की पूरी पहचान के लिए काफी है।
और इसी खोज में एक और किरदार आता है, डेवी।
हाँ, डेवी, वो इस बदलाव का उत्प्रेरक है, एक चिंगारी की तरह।
तो कौन है ये डेवी? कोई सपनों का राजकुमार?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही जमीनी हकीकत वाला इंसान है। उसे नायिका ऑनलाइन ढूंढती है, और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि
क्यों उसे जज नहीं करता?
बिल्कुल, वो उसकी अजीबोगरीब इच्छाओं को सुनता है और बस उन्हें स्वीकार करता है।
उनका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं रह जाता,
तो ये एक तरह का प्रयोग बन जाता है। हाँ, गहरी ईमानदारी और खुद को समझने का एक प्रयोग। डेवी उस दरवाजे की चाबी बन जाता है जिसे नायिका हमेशा से खोलना चाहती थी।
तो उस मोटल के कमरे में डेवी के साथ नायिका अपनी जिंदगी का वो पहलू जीती है जिसे उसकी सामाजिक पहचान में कोई जगह नहीं मिलती। उपन्यास उसकी इच्छाओं के बारे में क्या बताता है?
उपन्यास यहाँ बहुत साहसी हो जाता है। नायिका एक खास यौन कल्पना पर ध्यान केंद्रित करती है जहाँ वो पारंपरिक भूमिकाओं को पलटना चाहती है। मतलब उसकी इच्छा सिर्फ आनंद पाने की नहीं है, वो एक खास तरह का अनुभव देने की शक्ति हासिल करना चाहती है। वो रिश्ते में वो ताकत चाहती है जो पारंपरिक रूप से पुरुष के पास मानी जाती है।
तो ये उसकी सेक्सुअल एजेंसी की खोज है, अपनी कहानी की कर्ता बनना।
हाँ, और इसी के साथ उसका झूठ और भी बड़ा और विस्तृत होता जाता है।
तो उपन्यास में एक लाइन है, झूठ इतना विस्तृत हो गया था कि ये लगभग कला का एक काम था।
कमाल की लाइन है।
हाँ,
एक कलाकार के लिए ये कितना सटीक विद्रोह है। वो अपनी जिंदगी को ही एक परफॉर्मेंस आर्ट प्रोजेक्ट बना रही है।
बिल्कुल, वो एक पत्नी, माँ, कलाकार, इन सब भूमिकाओं से छुट्टी लेकर एक नई भूमिका गढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आप कितने मुखौटे पहन सकते हैं?
और शरीर, शरीर अक्सर वो सच बोल देता है जिसे जुबान छिपाती है।
एग्जैक्टली। जैसे जैसे उसका ये मनोवैज्ञानिक बदलाव गहराता है, उसका शरीर इस दोहरे बोझ को उठाने से इनकार कर देता है।
और यही कहानी में हर्निया का जिक्र आता है, जो मेरे ख्याल से इस उपन्यास का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है।
हाँ बिल्कुल, उसे एक बहुत ही दर्दनाक हर्निया हो जाता है, एक अंदरूनी अंग जो अपनी जगह से बाहर आने की कोशिश कर रहा है।
ये उसके अंदर दबा हुआ रहस्य है, उसका झूठ है,
जो अब शारीरिक रूप से बाहर आने के लिए जोर लगा रहा है। उसका शरीर उस सच को बाहर धकेल रहा है जिसे उसका दिमाग छिपाने की कोशिश कर रहा है।
ये सिर्फ कहानी का प्रतीक नहीं है, यह असल जिंदगी का भी सच है ना?
हाँ बिल्कुल। कितनी बार तनाव या अनकहा सच शारीरिक दर्द के रूप में महसूस होता है।
तो आखिरकार इसी हर्निया की वजह से उसे सच्चाई का सामना करना पड़ता है।
हाँ, उसे इलाज की जरूरत है और इसके लिए वो अपनी झूठी दुनिया में और नहीं रह सकती। अंत किसी जासूसी कहानी की तरह नहीं होता।
कोई उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ता।
नहीं, अंत एक स्वीकारोक्ति से होता है। वो घर लौटती है और अपने पति को सब कुछ बता देती है, झूठे सफर के बारे में, मोटेल के बारे में और देवी के बारे में भी।
और उपन्यास हमें कोई आसान सा सुकून देने वाला अंत नहीं देता, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो किसी एक पुरुष को नहीं चुनती। कहानी इस सवाल पर आके रुक जाती है कि अब क्या होगा।
उपन्यास में एक बहुत ही मार्मिक लाइन है, आप उस नए व्यक्ति को घर कैसे लाते हैं? वो व्यक्ति जिसने ये सब किया है और ये सब महसूस किया है, वो पुराने दरवाजे से अंदर फिट नहीं होती।
ये बात दिल पर लगती है। एक बार जब आप बदल जाते हैं तो आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस वैसे ही नहीं समा सकते।
बिल्कुल, उपन्यास हमें उसी अनिश्चितता के साथ छोड़ देता है जो किसी भी असली गहरे बदलाव के बाद आती है।
हाँ, जिंदगी के बड़े बदलावों के बाद चीजें साफ नहीं बल्कि और उलझ जाती हैं।
तो अगर हम इसके मुख्य विषयों की बात करें तो सबसे गहरा विषय क्या लगता है आपको?
मेरे लिए तो सबसे बड़ा विषय है अधेड़ उम्र के संकट को देखने का नजरिया बदलना। समाज अक्सर इसे एक अंत की तरह देखता है,
एक ढलान की तरह।
हाँ, लेकिन ये उपन्यास इसे एक क्रांति की तरह दिखाता है। ये अंत नहीं बल्कि एक नए, ज्यादा सच्चे स्व के जन्म की शुरुआत हो सकती है।
और दूसरा बड़ा विषय,
स्त्री की यौन इच्छा और उसकी एजेंसी।
बिल्कुल, नायिका की यात्रा सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, ये शक्ति के बारे में है। वो अपनी इच्छाओं को अपनी शर्तों पर परिभाषित करना चाहती है।
ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है जहां स्त्री की यौनिकता को हमेशा पुरुष की नजर से देखा जाता है।
और तीसरा विषय जिस पर हमने थोड़ी बात की, वो है पहचान का प्रदर्शन।
हम सब अपनी जिंदगी में कितनी भूमिकाएं निभाते हैं। हाँ, और नायिका का ये झूठा सफर इन सभी भूमिकाओं को एक एक करके उतार फेंकने का एक तरीका है, ताकि वो देख सके कि इन सब मुखौटों के पीछे असली इंसान कौन है।
मिरांडा जुलाई की लिखने की शैली भी इस कहानी को बहुत खास बनाती है। मतलब पूरी कहानी फर्स्ट पर्सन में है।
हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम उसकी डायरी या उसके मन की आवाज सुन रहे हैं। उसकी असुरक्षा, उसकी दलीलें, सब कुछ बहुत करीब से महसूस करते हैं।
और प्रतीक तो कमाल के हैं, झूठी रोड ट्रिप, मोटल का कमरा
और हर्निया।
हाँ,
और उपन्यास का शीर्षक भी ऑल फोर्स, इसका क्या मतलब हो सकता है?
ऑल फोर्स एक ऐसी अवस्था की ओर इशारा करता है जहां इंसान अपने चारों हाथ पैरों पर होता है,
जमीन के बहुत करीब।
हाँ, एक बहुत ही आदिम, एक बहुत ही असुरक्षित अवस्था,
जैसे एक बच्चा या कोई जानवर।
ये पुनर्जन्म का प्रतीक है।
वो अपनी पुरानी पहचान को मिटाकर जमीन से जुड़कर एक नई शुरुआत कर रही है।
बिल्कुल, तो ये उपन्यास हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया कभी भी सीधी, साफ सुथरी या आसान नहीं होती।
और ये आज के दौर में बहुत प्रासंगिक है। ये उस साहस को सलाम करता है जो एक अच्छी जिंदगी पर सवाल उठाने और एक ज्यादा प्रामाणिक जिंदगी जीने की कोशिश करने के लिए जरूरी है,
भले ही उसका रास्ता कितना भी अजीब और अकेला क्यों ना हो।
हाँ,
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।